ओम शांति। खजाने पर खजाने अभी हमें मिल रहे हैं, झोली भरपूर हो रही है, तो उस झोली को भरपूर करने के लिए बाबा के अनमोल रत्नों की जो बाबा ने माला बनाई है, जगमगाते बेशकीमती रत्नों में से एक रत्न हमारी आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी जी हमारे बीच हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आदरणीय दीदी ने MBBS किया मानव समाज की कर्मठ सेवाओं के लिए, लेकिन वो जीवन उन्हें रास नहीं आई। आप हेडक्वार्टर में आ गए और आपने 10 वर्ष ग्लोबल हॉस्पिटल में भी अपनी मन लगाकर सेवाएं की। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि दादियों का आपको बहुत सानिध्य मिला है, आपके पास बहुत अनुभव हैं उनके। आप महिला विंग के मुख्यालय कोऑर्डिनेटर भी हैं, BIP की बहुत अच्छी आप सेवाएं करते हैं, शिविर कराते हैं। आप एक कुशल वक्ता हैं, सरल चित नेचर है और हर्षित मुख सदा रहते हैं। तो अभी हमारे बीच आए हैं। कहते हैं दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो आज हमारे बीच आई हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी कैसे होगा, वो हम दीदी के मुखारविंद से सुनेंगे और पुनः उनका स्वागत भी करेंगे और उनसे सुनेंगे। आदरणीय सविता दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा से मिलन मनाने के लिए अपने मीठे घर मधुबन में पधारे हैं और साथ साथ ये ज्ञान योग तपस्या की भट्टी भी करके अपने स्थिति को श्रेष्ठ बना रहे हैं और यहाँ से अपनी बैटरी पूरी चार्ज करके आया। बाबा कहते हैं बादल आए हैं तो बादल भरकर जाएंगे, रिफ्रेश होकर जाएंगे। तो भिन्न भिन्न बाबा के ज्ञान के गुहे राजों को समझ रहे हैं और अपनी चेकिंग भी कर रहे हैं कि हम कहाँ तक बाबा की आशाओं को पूरा कर रहे हैं, कहाँ तक बाबा की शिक्षाओं को धारण कर अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो बाबा तो हमें सर्वगुण संपन्न बनाने आए हैं, तो 36 गुणों का गायन है और उसमें एक गुण है सत्यता की शक्ति। पवित्रता और सत्यता एक दो के बहुत नजदीक हैं और बाबा हमेशा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, क्योंकि शिव बाबा को सत्य पसंद है। उसे कहते ही हैं सत्यम शिवम सुंदरम, या कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है। शिव बाबा को हम सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु भी कहते हैं और शिव बाबा सत्य ज्ञान देकर के ही सतयुग की स्थापना करते हैं। नहीं, जो सत्य का युग है, सच खंड बाबा जिसको कहता है, कलयुग को झूठ खंड कहते हैं। तो इसको झूठ खंड क्यों कहा? क्योंकि कलयुग में लोग समझते हैं कि झूठ के बिना काम नहीं चल सकता, झूठ बोलना ही पड़ता है। अगर कलयुग में अपने आप को सेफ रखना है या किन्हीं काम को निकालना है या अपने आप को आगे बढ़ाना है तो झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कलयुग में कोई नहीं होगा जो ये कहे कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला अपनी जिंदगी में। कोई कह सकता है? हाँ, आप सब इतने भाई बहने हैं यहाँ, कोई कह सकता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला? बोला ही है। और अगर सत्यता की शक्ति का महत्व हमें नहीं मालूम है तो हर दिन हम झूठ का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी इस कलयुगी दुनिया में भी ऐसे मनुष्य हुए जिन्होंने प्रतिज्ञा की अपने जीवन में कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हालांकि कहा, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो जो ज्ञान भी बाबा ने दिया वो क्यों बाबा को देना पड़ा? क्योंकि जितने भी शास्त्र बने हुए हैं हमारे, उसमें सच कितना है? आटे में नमक जितना, इतना ही सत्य है। तो जैसे महात्मा गांधी का हम मिसाल देते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में ये प्रतिज्ञा की, जब वो बहुत छोटे थे तो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कथा देखी, नाटक देखा, और उन्होंने देखा कि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए कितनी मुश्किलें सहन की, लेकिन वो अपने सत्य मार्ग से नहीं हटे, चाहे उन्हें शमशान घाट में भी नौकरी करनी पड़ी ना, और अपने बेटे के लिए भी उनके पास वो कफन नहीं था। तो वो देखकर वो इतना प्रभावित हुए कि उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा। और इसलिए उन्होंने जो आत्मकथा भी लिखी, अपनी बायोग्राफी लिखी, उसका नाम रखा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया उसे सत्याग्रह कहते हैं। तो बचपन की घटना, ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग हैं उनके जीवन के, लेकिन एक प्रसंग है कि जब वो पढ़ते थे स्कूल में, तो एक बार इंस्पेक्शन हो रहा था और बच्चों को कुछ इंग्लिश शब्द दिए गए जिनकी स्पेलिंग लिखनी थी। तो बाकी सब शब्दों की स्पेलिंग तो लिख ली, लेकिन एक केटल शब्द की स्पेलिंग उन्होंने गलत लिखी। तो उनके टीचर जो चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि सब बच्चों के स्पेलिंग सही हैं, सिर्फ जो मोहन है, उनका नाम मोहनदास था, कि मोहन की जो स्पेलिंग है केटल की वो गलत है। अब क्योंकि उनके क्लास के प्रेस्टीज का प्रश्न था, प्रतिष्ठा का प्रश्न था, तो उन्होंने उसको इशारा किया, मोहन को इशारा किया कि तुम देखो आगे वाले लड़के ने सही स्पेलिंग लिखी है, उसकी नकल करके अपनी स्पेलिंग ठीक कर लो। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार फिर उन्होंने इशारा किया जब चक्कर लगाया तो, लेकिन फिर भी उसने नकल नहीं की और जो गलत था, मतलब उसको नहीं आता था, उसको वैसे ही रहने दिया। तो निश्चित है कि उनकी क्लास का जो नंबर था वो थोड़ा पीछे चला गया, क्योंकि एक स्टूडेंट ने स्पेलिंग पूरी ठीक नहीं लिखी। तो इंस्पेक्शन पूरा होने के बाद टीचर ने थोड़ा गुस्से से कहा कि मैंने तुमको इशारा भी किया कि तुम देखकर सही कर लो, तुमने क्यों नहीं सही किया? तो उसने कहा कि सर, मैंने अपने जीवन में प्रतिज्ञा की है कि मैं ईमानदारी से ही चलूंगा, तो मैं कोई भी गलत तरीके से अपनी स्पेलिंग सही नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने वो नकल नहीं की। और ऐसे ही दादी जी, हमारी दादी प्रकाशमणि दादी जी, क्योंकि उनके समीप हमें रहने का सौभाग्य मिला है। तो जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस जब होती थी, जूरिस्ट माना जहां जिसमें लॉयर्स आते हैं, और इस पेशे को तो माना ही ऐसा जाता है कि बिना झूठ के तो वकालत होती ही नहीं है। तो दादी कहती थी उस कॉन्फ्रेंस में, उस सेमिनार में, और फक्र से कहती थी कि बचपन से लेकर आज तक चाहे कोई भी कारण बना है लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला है। तो हमने, तो मैं अब तक सिर्फ दो ही लोगों का मिसाल जानती हूँ जो अपने जीवन में ये दावा करते हैं कि हमने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए हों। तो बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया, जो भक्ति में गाते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, अस्तो माँ सद्गमे, मृत्यु माँ अमृतगमे। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो क्या कहा? असत्य से सत्य की ओर ले चलो। इसका मतलब अभी हमें सत्य मालूम नहीं है, और शिव बाबा जो हमें सत्य ज्ञान देते हैं उससे हमारे जीवन का ज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। तो पहला सत्य ज्ञान मिला आत्मा का। आत्मा सत्य भी है और सत्य भी है। सत्य माना होता है अविनाशी। तो सत्य शब्द के दो अर्थ होते हैं, अविनाशी और सत्य। तो जो अविनाशी है, सदा है और सत्य भी है। फिर शिव बाबा ने अपना स्वयं का परिचय भी हमें दिया। फिर तीसरा, इस पूरे सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें समझाया कि आत्मा पूरे चक्र में 84 जन्म लेती है, 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। तो बाबा ने कितना स्पष्ट हमें बताया कि चक्र की आयु कितनी है और हम कितने जन्म लेते हैं, जिसे कहा बाबा हमें सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। तो हमें ये समझाया चक्र में हम क्या थे और अब क्या हैं और हमें क्या बनना, हमारे तीनों कालों का ज्ञान, हमारा सत्य स्वरूप क्या था। हम सो हम का जो मंत्र बाबा कहता है वो हमें समझ में आया। तो उसके आधार पर, उस सत्य ज्ञान के आधार पर ही हम भविष्य में मनुष्य से देवता बनते हैं। सत्य नारायण की कथा सुनकर सचमुच नारायण बन जाते हैं। तो इसे कहा सच्ची सत्य नारायण की कथा। भक्ति में भी सत्य नारायण की कथा करते हैं लेकिन वो कथा हमें नारायण बनाने वाली नहीं है। और सत्य संग है, बाबा के साथ का जो संग है, बाबा की जो याद है, वो श्रेष्ठ संग, यानी सर्वोच्च संग, सर्वश्रेष्ठ संग, हमें ईश्वरीय संग मिलता है, उसको भी हम सत्संग कहते हैं। या ज्ञान सुनना सुनाना, उसको भी सत्संग कहते हैं। सच्चाई सफाई बाबा कहते हैं, ये पवित्रता के बहुत नजदीक है, जिसे हम प्यूरिटी की रॉयल्टी और रियलिटी कहते हैं। सत्य स्वरूप के ज्ञान से, सत्य ज्ञान से ही हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति आती है। जब तक मुझे ये समझ नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और अपने निजी स्वभाव में मैं आत्मा पवित्र हूँ, पवित्रता ही मेरा स्वभाव है, तब तक वो पवित्रता की शक्ति आत्मा के अंदर नहीं आती है। बाबा की याद से, बाबा ने जो हमें विधि बताई, उस विधि से हम पवित्रता के आधार पर सत्यता की शक्ति का अनुभव करते हैं। दुनिया में भी कुछ लोग होते होंगे लेकिन उनकी सत्यता पवित्रता पर आधारित नहीं है, क्योंकि कोई भी आत्मा इस सृष्टि में संपूर्ण पवित्र हो ही नहीं सकती ब्राह्मणों के अलावा। और फिर उसके बाद जब देवताई जीवन होता है तो उसमें भी वो नेचुरल प्यूरिटी होती है। तो बाबा कहते हैं सच्चाई सफाई, अर्थात हम बाबा के साथ सच्चे रहें, फिर आपस में भी जब हम व्यवहार में संबंध में आते हैं तो भी हम सच्चे रहें, एक दो के प्रति हमारा दृष्टि वृत्ति कृति उसमें सच्चाई सफाई हो संबंध में भी। तो बाबा के साथ सच्चे रहना, बाबा साकार मूल्यों में हमें कहते हैं, बहुत बार ये मूल्यों में आता है कि अगर हमसे कोई भूल हो गई, अभी कल परसों ही मुरली में था, तो हमें बाबा को सच सच सुना देना है और माफी ले लेनी है, तो हमारा आधा माफ हो जाएगा। तो क्यों सुनाने की विधि रखी? कई सोचते हैं भगवान को तो पता ही है ना, वो तो जानता ही है कि हमने क्या किया है, तो सुनाने की क्या जरूरत है। लेकिन जब हम सुनाते हैं तभी हमें रियलाइजेशन होता है, और जब रियलाइजेशन होता है तभी हम परिवर्तन करते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति अपने आप को बदलने की तब आती है। और इसीलिए बाबा हमें रोज चार्ट रखने के लिए बोलते हैं, तो चार्ट रखते हैं क्या कहेंगे, जो रोज चार्ट लिखते हैं है ना, सोने से पहले सारे दिन में, क्योंकि हम सभी पुरुषार्थी हैं तो श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्म हमसे ना हो ऐसा तो होता नहीं है, कोई ना कोई भूल गलती हम सबसे होती ही है, तो अगर हमने रात को सोने से पहले बाबा को चार्ट दे दिया तो अपने आप ही हमने बाबा को सुना दिया बता दिया। तो जो समझते हैं कि हम लिखते हैं सोने से पहले चार्ट, वो हाथ उठाए। अच्छा, बहुत गिनती के हाथ उठे हैं। अच्छा, जो लिखते नहीं हैं लेकिन बाबा को सुना देते हैं, सुना के सोते हैं, अच्छा वो काफी हैं। और जो किसी में भी हाथ नहीं उठा रहे उन्हें क्या करना है, आज से ही बाबा को अपना चार्ट जरूर देना है, सोने से पहले हम बाबा को अपना चार्ट देकर के सोएं। तो ये बाबा के साथ सच्चे, तो बाबा के दिल को हम जीत लेते हैं। फिर दूसरा, आपस में जब हम व्यवहार में आते हैं तो एक दो के प्रति जो मेरा भाव है वही मेरे व्यवहार में आए। पर आज इंसान की आदत क्या होती है, कलयुगी मनुष्यों की, वो अंदर कुछ और होते हैं बाहर कुछ और होते हैं, जो अंदर में वो आपके लिए सोचते हैं बाहर ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, बाहर में अच्छा व्यवहार करेंगे, आपसे मीठा बोलेंगे, और जैसे ही पीठ पीछे किसी दूसरे से आपकी बात करेंगे तो ग्लानी की बातें, आपकी बुराई की बातें, फिर वो ऐसा तो बातें वहां तक तो रहती नहीं है, घूम फिर करके उसके पास जरूर आ जाती हैं, और जब आएंगी तो संबंधों में कड़वाहट जरूर होगी, वो उनको जरूर महसूस होगा कि हमने तो इनके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। और इसको कहावत के रूप में क्या बोलते हैं दुनिया में, मुख में राम और बगल में व्यवहार कैसा करते हैं, सामने तो बहुत अच्छे अच्छे हैं और पीठ पीछे कैसा करते हैं। तो ऐसा व्यवहार से व्यक्ति अपना विश्वास खो देता है, आपस में ही हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं, तो सोचिए भगवान कैसे पसंद करेगा जब हम ऐसा व्यवहार करेंगे किसी से। कोई इंसान को भी पसंद नहीं आता कि हम किसी के साथ धोखा करें, किसी के साथ हम हेरा फेरी करें, कपट करें, इसको छल कपट करना भी कहते हैं, माना जो हम कहते हैं पीठ पीछे हम कुछ और करते हैं, उसका उल्टा ही करते हैं। तो भगवान को भी ऐसा व्यवहार पसंद नहीं है। तो जितना हमारी आपस में सच्चाई सफाई होती है एक दो के प्रति, भाव में भी हम एक दो के प्रति साफ होते हैं, तो उतना ही संबंधों में समीपता होती है। समीपता का आधार ही है सच्चाई और सफाई। अगर मन में कुछ और रखते हैं वो वृत्ति वृत्ति तक पहुंच जाती है, सूक्ष्म स्तर पर भी हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो वो सामने वाले को पता चल जाता है, और वो भले ही रहते एक घर में होंगे लेकिन फिर भी मन नहीं मिलेंगे, फिर भी दिल की बात करने में उनसे महसूस होगा कि इनसे नहीं करनी चाहिए, ये इन पर विश्वास नहीं कर सकते, तो दूरी रहेगी, मतलब मन की दूरी, भले रह साथ में रहे हैं लेकिन मन से दूर होंगे। और सच्चाई सफाई के लिए बाबा कहते हैं कि अगर सच्चाई सफाई है हमारे अंदर तो हम सदा हर्षित रहेंगे। सच तो बीठो नच, बाबा कहते हैं। वो सदा ही निर्भय होगा, निश्चिंत होगा, बेफिकर होगा, क्योंकि सच बोलने वाले को कभी भी बातें नहीं बनानी पड़ती। वो कहते हैं ना, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और याद भी रखना पड़ता है कि मैंने क्या झूठ बोला। फिर अगर दोबारा वो बात सामने आई तो कई बार लोग ऐसे करते हैं कि अपने को बचाने के लिए दो प्रकार से झूठ बोलते हैं दुनिया में। एक तो अपना नाम, मेरे से कोई गलती हो गई और सामने आ गई मानो, और मेरे को कहा गया, पूछा गया, तो तुरंत झूठ बोल देंगे, क्योंकि अगर मैंने मान लिया, अगर मैंने सच स्वीकार कर लिया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा मान है, सम्मान है, वो किन्हीं कारणों से, गुणों से है, और जो मेरे से गलती हो गई उससे सिद्ध हो रहा है कि मेरे अंदर तो ये कमी है, गुण नहीं है, तो हम उसको नहीं मानते और सिद्ध करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ, या किसी दूसरे को भी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा ठीक है, कई बातें बनाने में बहुत होशियार होते हैं, माना वो झूठ बात को इतना चतुराई से सच सिद्ध करेंगे कि सामने वाला समझेगा कि ये बिल्कुल ही सच बोल रहे हैं, इनके जैसा तो सच्चा कोई है ही नहीं, और जो सचमुच सच्चा होगा उसको झूठ सिद्ध कर देंगे। वो अपना सच बोलना भी चाहेगा तो, माना उसके अंदर वो सच बोलने की इतनी चतुराई नहीं है, तो वो भले भी सच्चा होगा तो भी उसको ही झूठा मान लिया जाएगा, और जो झूठ बोल रहा है उसको सच्चा मान लिया जाएगा। तो ठीक है, आपने अपना नाम बचा लिया। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो हमने अपने आप को बचा लिया, क्योंकि हो सकता है कि मनुष्य आत्माओं से तो हम छिपा लेंगे, उन्हें सच का ना पता चले, लेकिन क्या भगवान से छिपा सकते हैं, या अपने आप से भी छिपा सकते हैं? हमको तो मालूम होता है ना सच्चाई अंदर में, तो इसीलिए शिव बाबा के दिल से उतर जाते हैं, क्योंकि बाबा को तो मालूम है, और फिर अपने आप में भी हम वो खुशी का अनुभव नहीं करते, क्योंकि अपना दिल खाता रहता है कि मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, क्योंकि जब सत्य ज्ञान है तो असत्य के भी नॉलेज हमें होती है सत्य ज्ञान होने के बाद। तो कई बार ब्राह्मणों में भी बाबा कहते हैं ऐसी चतुराई करते हैं, क्योंकि संस्कार, पुराने संस्कार अगर हमारे पूरी तरह गए नहीं हैं, तो कई बार हम इसको युक्ति बोलते हैं। अब युक्ति बोलते हैं तो जैसे कहा कि दूसरी तरह से भी हम कई बार की, अब मानो सब घर में ज्ञान में नहीं चलते हैं, और उस समय उसके कारण हमें झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि हम सेंटर पर आना चाहते हैं क्लास करने के लिए, या मधुबन आना चाहते हैं भर्ती करने के लिए, या कोई भी ऐसे प्रोग्राम के लिए हम मधुबन आना चाहते हैं, लेकिन घर वालों से हमें वो छुट्टी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं, मानो आप सेंटर जाना है तो बोलेंगे बाजार जा रहे हैं, या किसी से मिलने जा रहे हैं, जो भी, और वहां जाने की बजाय कहां गए, गए हम सेंटर पर। तो बाबा कई बार कहता है कि अगर कल्याण का भाव है, ये स्व कल्याण है, क्योंकि इसी में ही मेरा आत्म कल्याण है कि मैं सेंटर पर जाऊं और ज्ञान सुनूं, तभी हमारी उन्नति होगी, स्व उन्नति होगी। तो कई बार ये झूठ नहीं है, मतलब इसको हम पाप नहीं कहेंगे। अगर हम दूसरों के कल्याण के लिए भी कभी बोलते हैं, मानो बोलना पड़ता है किसी दूसरे के लिए भी, लेकिन उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है यानी अपने आप को कोई बचाने का भाव कि मेरा नाम कम ना हो जाए, जैसे कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो भी पाप नहीं है। जो कल्याण अर्थ कहा गया, ये कर्मों की गुह्य गति हमें बाबा बताते हैं कि समय स्थान परिस्थिति के अनुसार किस भाव से वो कर्म किया गया उसमें अंतर हो जाता है। तो अगर वो कल्याण के भाव से है तो फिर नहीं। मानो मधुबन भी हम झूठ बोलकर आ गए, अब होता है तो बहन ने कहा मैं मायके जा रही हूँ, और मायके तो गई लेकिन मायके से 4 दिन निकाल करके कहाँ आ गई, मधुबन भी आ गई। तो ये हमने अपनी उन्नति के लिए जो किया, अपने कल्याण के लिए किया। लेकिन मानो घर में कोई नुकसान करता है, बच्चा है नुकसान करता है, और आपको पता चलता है, आप पूछते हैं तो वो झूठ बोल देगा, झूठ बोलेगा कि नहीं नहीं मम्मी मैंने नहीं किया ये, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो माँ मारेगी या माँ डांटेगी जो भी, तो उस डांट से बचने के लिए उसने झूठ बोल दिया। तो यहाँ पर हमारा डबल हिसाब किताब बनता है कि एक तो हमारे डर के कारण बच्चे ने झूठ बोला, अगर हमारी डांट का मार का डर नहीं होता तो वो सच बता देता ना? और फिर ऊपर से अगर हम गुस्सा करते हैं कि किया नुकसान और फिर भी झूठ बोल रहा है तो गुस्सा आ जाता है, इसने झूठ बोला ना इसलिए मैंने गुस्सा किया, तो अगर मैंने गुस्सा भी किया तो फिर वो डबल हो गया। फिर कई कहते हैं जी हम तो बिजनेस करते हैं और बिजनेस तो बिना झूठ के होता ही नहीं है। आज के जमाने में अगर हमें प्रॉफिट कमाना है, कुछ मुनाफा कमाना है, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो बाबा की श्रीमत क्या है कि बिजनेस में हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बिजनेस करते हैं, सभी तो बिजनेस नहीं करते, कुछ तो नौकरी भी करते हैं, पर नौकरी करने में भी कई बार लोग रिश्वत लेते हैं या ना लेन देन करते हैं, तो वो भी गलत है। कुछ लोगों को तो मजबूर भी किया जाता है, वो करना नहीं चाहते तो भी कहते हैं, ऊपर वाले जो उनके ऑफिसर्स होते हैं वो, क्योंकि उसमें सबके कमीशन होते हैं, तो फिर वो जब तक वो नहीं करेंगे तो ऊपर वालों को भी वो नहीं मिलेगा। कई बार ऐसी नौकरियां होती हैं जैसे पुलिस की नौकरी है, उसमें ऐसा बहुत होता है कि एक दो से बिना लिए दिए काम करते ही नहीं है, और भी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं कई, तो अगर हम ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां तक हो सके बने तक, बाबा कई बार मुरलियों में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमें ईमानदारी से ही काम करना है, सच्चाई से ही कमाना है। हाँ, अगर नौकरी जाने की नौबत आ सकती है ना, मानो अब सामने वाले को लगता है कि इसके कारण तो मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, ये इतना ईमानदार है कि मेरी कमाई नहीं हो रही है बिल्कुल, तो इसको हटाओ यहाँ से, हटाओ मतलब इनकी नौकरी बदल के ट्रांसफर करो, या अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो ठीक है। फिर बाबा कहता है कि ठीक है, बाबा को याद करके थोड़ा बहुत, अगर कलयुग का समय है अभी क्या कर सकते हैं ना, तो वो कंडीशन अलग होती है। और बिजनेस में भी बाबा कहता है कि जो बिजनेस के एथिक्स होते हैं उसके अनुसार हमेशा एक मार्केट रेट होता है, और अगर हम उसके अनुसार बिजनेस कर रहे हैं तो कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर हम लालच में आकर के, जैसे लोग दुनिया में मिलावट करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, ये सब ज्यादा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए लोग करते हैं ना, तो अगर लालच में आकर के हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे दूसरे का नुकसान होता है, अब खाने पीने की चीजों में मिलावट करेंगे तो लोगों की हेल्थ पर बुरा असर ही होगा। आजकल कैसा कैसा दूध बेचते हैं हम सब जानते हैं, जो भी बाजार में खाने की चीजें आती हैं, तो ये सब करने का मतलब होता है कि असली चीज कम हो, नकली मिला दिया सस्ती वाली, तो उसी रेट में ज्यादा कमाई हो जाएगी। या फिर वो स्टोर्स में भर भर के रख देते हैं और जब सीजन नहीं होती फिर निकाल के बेचते हैं, डबल रेट में निकाल के बेचते हैं, ऐसे ऐसे काम सब करते हैं बिजनेस में। तो अगर हम बिजनेस में हैं, भले ही हमारी कमाई थोड़ी कम हो, भले ही हमारा मुनाफा कम हो, लेकिन हम बाबा के बने हैं तो हमें कैसा बिजनेस करना है? मेरा ही स्वार्थ पूरा हो या मेरा ही मुनाफा हो, नहीं, सामने वाले का भला किसमें है ये सोच करके हमें बिजनेस करना है। माना दुआएं कमानी है, धन कमाने की बजाय क्या कमाने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि दुआएं जाएंगी साथ में। और जो गलत तरीके से धन कमाया वो तो कभी सफल नहीं होता। कई बार लोग सोचते हैं चलो हम ज्यादा कमा लेंगे, बाबा की सेवा में लगा देंगे। जैसे मुरली में भी बाबा ने कहा ना, कल परसों की मुरली में, कि पाप करते हैं बिजनेस में फिर धर्माऊ भी निकालते हैं, कि धर्माऊ इसलिए निकालते हैं कि जो पाप किया वो हल्का हो जाए। तो यहाँ भी सोच लेते हैं चलो बाबा की सेवा में लगा देंगे, पर फिर बाबा कहता है ऐसा धन सेवा में लगेगा, वो धन सेवा में भी सफल नहीं होता, वो किसी ना किसी तरह से व्यर्थ चला जाता है। तो इसीलिए जितना हो सके हमें सच्चाई से ही बिजनेस भी करना है। जो भी काम हम करते हैं, जो भी कर रहे हैं, वो हम सच्चाई और ईमानदारी से करें तो हम बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। और बाबा राजी हैं उसकी निशानियां, सच्ची दिल साफ दिल है हमारी, तो हमने दाता भाग्य विधाता वरदाता को राजी किया। और वो कैसे राजी हैं उसकी निशानियां हैं कि अगर दाता राजी हैं हमारे ऊपर तो कभी भी गुणों शक्तियों और ज्ञान के गुह्य राजों से हम वंचित नहीं रहेंगे। माना ये हमारे में संपन्न होंगे। हो सकता है कोई गुण शक्ति की परसेंटेज हो, लेकिन ये गुण और शक्ति मेरे में नहीं है ऐसे शब्द हमारे मुंह से कभी नहीं निकलेंगे। हाँ ये मेरे साथ करते हैं लेकिन मैं सहन नहीं कर सकती, ऐसा शब्द कभी नहीं आएगा कि मैं इतना सहन नहीं कर सकती, ये मेरे से नहीं होता। तो हर गुण हर शक्ति हमारे अंदर होगी, वो बाबा के वरदान हमारे ऊपर है। और भाग्य विधाता राजी है तो बाबा कहता है भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई देगा, यानी उनके चेहरे में संतुष्टता की झलक और फलक होगी, नहीं वो मूरत में दिखाई देगा। यानी जो भरपूर होते हैं वो संतुष्ट होते हैं। तो भाग्य विधाता राजी है माना सर्व भाग्य, जो तन मन धन संबंध चारों भाग्य, तन मन धन जन, ये भाग्यों में भी भरपूर होंगे। तो आने वाले 21 जन्म तो है ही है, लेकिन वर्तमान में भी, वर्तमान संगम युग में भी चारों भाग्य अनुभव होंगे। तो तन का भाग्य माना तन का रोग, बाबा कहता है कभी भी पुरुषार्थ और प्राप्ति में बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि हिसाब किताब तो चुकतु होते ही हैं, तो कोई ना कोई तन का रोग आता ही रहता है। लेकिन तन का कर्म भोग आया तो वो कभी भी हमें पुरुषार्थ और प्राप्ति में बाधा नहीं बनेगा। और कभी भी हम तन की बीमारी के कारण वंचित हो जाएं, कोई सेवा से भी वंचित हो जाएं, वो भी नहीं। और तन का हिसाब किताब हम कर्म भोग के समय भी सेवा के निमित्त बन जाएंगे। जैसे हमने दादियों को देखा है कि दादियां जब कर्म भोग चुकतू कर रही हैं, तन का हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं, तो भी कोई ना कोई ऐसी सेवा के निमित्त बने। जैसे गुलजार दादी का हम जानते हैं कि दादी जब बॉम्बे में इलाज करवा रहे थे 80s में, तो वहां डॉक्टर अशोक मेहता जी उनका इलाज कर रहे थे, और वो इलाज करते समय वो देखते थे दादी को कि दादी कितनी अलग हैं और सब मरीजों से। सब मरीजों के चेहरे पर तो कोई ना कोई दर्द, उदासी या कोई ना कोई शिकायत उनके उस पर रहती ही थी, डॉक्टर ये हो रहा है वो हो रहा है, और दादी कभी भी कुछ नहीं कहते थे। और दादी तो और ही उनसे पूछते थे कि डॉक्टर आप कैसे हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था। फिर उन्होंने ही पूछा दादी से, हालांकि वो समझते थे कि ये कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं उनके रहन सहन से और उनके बोलचाल से। तो फिर दादी ने बताया कि हम राजयोग करते हैं और राजयोग से हमारे अंदर ये शक्ति है, और आप भी आइए, कभी माउंट आबू आइए। और जब उनको निमंत्रण दिया तो इतना प्रभावित है कि वो आए माउंट आबू, और माउंट आबू आए तो यहाँ ही उनको संकल्प आया कि इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ एक अस्पताल होना चाहिए। बहुत भाई बहने आते हैं यहाँ पर, अचानक कोई बीमार होता है तो उसको इलाज मिले, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। और उनके ही संकल्प से फिर ग्लोबल हॉस्पिटल बना। और ग्लोबल हॉस्पिटल केवल एक ग्लोबल हॉस्पिटल नहीं संभाला, उन्होंने ही संभाला, और फिर उसका इतना विस्तार हुआ कि आज 5-6 हॉस्पिटल जो हैं वो अपने ब्रह्मा कुमारी उसके अंतर्गत चलते हैं। तो देखिए उनकी स्थिति ने सेवा की, और आज कितने डॉक्टर्स बाबा के बच्चे बन चुके हैं। वो एक आत्मा विशेष आत्मा निमित्त बनी, और इतने उसके बाद डॉक्टर्स आते रहे बाबा के यहाँ, बाबा के घर में, बाबा के कार्यक्रम में। तो बाबा ने कहा कि यदि हमारे अंदर वो सच्चाई सफाई है, माना वो सत्य ज्ञान की स्थिति है हमारी, तो आत्माओं की हम सेवा करेंगे और कभी भी कर्म भोग के वश दुखी नहीं होंगे, लेकिन उसको चलाएंगे। दुखी होने का मतलब मन ही मन बहुत चिंतन करना, उसका ये हो गया, मेरे को ये हो गया, ये कैसे हो गया, ये कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, ऐसे बहुत कुछ लोगों की आदत होती है। बीमारी छोटी सी होती है उसका चिंतन इतना करते हैं कि पहाड़ बना लेते हैं उसको, तो सचमुच बीमारी बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारे मन का भी संबंध हमारे शरीर के साथ है। और जो कर्म योगी होगा वो बीमारी को ना सोचेगा ना उसको वर्णन करेगा। अगर मन में बहुत चलता है ना तो हम बोले बिना भी नहीं रह सकेंगे, जरूर उसको सुनाएंगे भी कि आज मेरे को ये हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है, तो अपने दुख से दूसरों को भी दुखी करेंगे। लेकिन कर्म योगी हैं तो इतनी पावर है कि न तो बीमारी का चिंतन न उसका वर्णन, क्योंकि हम बीमारी कॉन्शियस नहीं होते, सोल कॉन्शियस होते हैं। और जब सोल कॉन्शियस होते हैं तो बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं, और वो कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, वो बीमारी अपने आप ही थोड़े समय में विदाई ले लेती है। ऐसे बहुत बाबा के बच्चों के अनुभव होते हैं कि यहाँ तक कि असाध्य बीमारी भी जो डॉक्टर कह देता है कि भाई नहीं ठीक हो सकती, वो भी कर्म योगी बन करके, साक्षी होकर के अपना हिसाब किताब चुकतू करते हैं, तो ऐसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। फिर मन का भाग्य होता है कि मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि जब हम सर्व प्राप्ति संपन्न हैं तो उसकी प्रारब्ध है ही खुशी, और जब सर्व प्राप्ति संपन्न है तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करते हैं। भरपूर होता है तो उसको इच्छा नहीं होती है, जैसे हम कहेंगे पेट भरा हुआ है तो और नहीं खा सकते, हम बोलेंगे नहीं नहीं अभी नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही मन से भरपूर है, मन से संपन्न है, तो कभी भी किसी व्यक्ति वैभव की तरफ हमारी बुद्धि नहीं जाएगी, तभी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति हम कहेंगे। और मन सहज ही मन मनाभाव हो जाएगा, जब भी बाबा की याद में बैठेंगे मन आसानी से बाबा में एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि एक बाप दूसरा ना कोई, ये मन की स्थिति है। तो ये मन का भाग्य हमें अनुभव होता है कि सहज योगी हैं, जहां भी जब भी चाहे बाबा से योग लगाना चाहे सहज बाबा में मन लग जाता है। और फिर धन का भाग्य है, सबसे बड़ा धन तो बाबा ने ज्ञान धन दिया हमें, जो अविनाशी धन है, और एक एक रत्न लाखों रुपए का है बाबा कहता है, और वो ज्ञान धन ही हमारी कमाई का साधन है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, है ना। लेकिन साथ साथ स्थूल धन भी चाहिए, क्योंकि वो भी आवश्यकता है निर्वाह के लिए, स्थूल धन भी चाहिए। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में हमको रहने खाने के लिए जितना आराम से हम चलते रहें, उसके लिए जितने धन की आवश्यकता है वो हमें मिलेगा, उसकी कमी नहीं पड़ेगी कभी भी। लेकिन आप सोचो कि मैं करोड़पति हो जाऊं ब्राह्मण जीवन में, तो वो उसके लिए बाबा नहीं करेगा, क्योंकि बाबा को पता है कि अगर करोड़पति हो गए तो क्या होगा, माया चांस ले लेगी। और इसीलिए बाबा मुरलियों में कहते भी हैं कि बाबा गरीब निवास है, गरीब ही साहूकार बनते हैं, और जो आज के करोड़पति हैं वो बाबा के बच्चे नहीं बनते और ना ही वो अपना धन लगा पाते हैं। तो फिर ऐसे करोड़पति बनना है क्या? और फिर सेवा के लिए हमें धन चाहिए, तो बाबा कहता है सेवा के लिए भी अगर सच्ची दिल है, क्योंकि सेवा में भी दोनों बातें होती हैं, कई बार स्वार्थ होता है और कई बार हम सच्ची दिल से बाबा की सेवा करना चाहते हैं, तो अगर सच्ची दिल है तो वो धन की कमी महसूस नहीं होगी, सेवा के लिए भी धन है ऐसा अनुभव होगा, और नहीं तो बाबा किसी को निमित्त बना देगा। और ये भी हमने अनुभव किया अपने जीवन में भी, कई बार ऐसी सेवाओं के अवसर आए जब लगता था तो देखते थे कि पता नहीं कौन कहाँ से निमित्त बन जाता है, और खुद को ही आश्चर्य होता है कि ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि ये आत्मा भी ऐसे समय पर सहयोग कर सकती है। तो बहनें जो सेवा करती हैं या जो भी भाई बहनें, चाहे वो प्रवृत्ति में भी रहने वाले हैं, वो भी अनुभव करते हैं कि अगर सच्ची दिल है और हम जितना लगाना चाहते हैं बाबा की सेवा में, कहाँ ना कहाँ से वो धन हमारे हाथ में होता है और हम लगा पाते हैं। लेकिन अगर हम नाम मान शान कमाना चाहते हैं, फिर कुछ लोगों को ये भी होता है कि हम इतना धन सफल करेंगे ना तो हमको मान मिलेगा, बहन जी पूछेगी या जो भी स्टेज पर बुलाया जाएगा, कई तरह से सोच सकते हैं। और जब इस तरह से अगर हम सेवा करते हैं तो जरूर हमारे पास धन होगा भी, हम सफल भी करेंगे, हमें मान भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, जो इच्छा है वो पूरी होती है। लेकिन बाबा कहता है वो आपने फल यही खा लिया, अगर मैंने यही नाम मान शान कमा लिया तो मैंने कच्चा फल खाया यहाँ, तो भविष्य जमा नहीं होता है उसका। हम सोचते हैं कि हमने इतना सफल किया बाबा की सेवा में, हमने जमा किया, लेकिन वो फिर जमा नहीं होता। इसीलिए गुप्त दान महापुण्य कहते हैं, तुरंत दान महापुण्य कहते हैं। जितना गुप्त सेवा हम करेंगे बाबा की, और जितना निस्वार्थ भाव से करेंगे और जितना सच्ची दिल से करेंगे, उतना वो पूरा का पूरा हमारा जमा होता है। और यहाँ तक भी बाबा कहता है कि आप करेंगे उसके बाद भी आपका भंडारा और भंडारी और भी भरपूर हो जाएगा, कमी तो छोड़ो लेकिन और ही वो भरपूर हो जाएगा। और जन का भाग्य अनुभव होगा, चाहे हम लौकिक संबंधों में हैं, चाहे अलौकिक संबंध में, ईश्वरीय परिवार में है, 95% आत्माओं से स्नेह सहयोग मिलेगा, 5% जो रह गए उसमें कभी को स्नेह देंगे वो, कभी हमारी परीक्षा भी लेंगे, क्योंकि इतनी आत्माओं से तो हमारा हिसाब किताब होता ही है, द्वापर युग से हम साथ साथ चलते आ रहे हैं, सतयुग त्रेता में तो हिसाब किताब नहीं बनता लेकिन द्वापर से हिसाब किताब बनने लग जाते हैं, तो 5% आत्माओं से हमारा हिसाब किताब चुप्त होता है, तो वो भी हमें शुभ भावना शुभ कामना से चुप्त करना है। ऐसा नहीं कि वो जैसा मेरे साथ कर रहे हैं हम भी उनके साथ वैसा ही करने लग जाएं, तो अगर हमने वैसा किया तो हमारा हिसाब किताब कई गुना हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा। अगर समाप्त करना है ना, कहते हैं हिसाब के किताब को समाप्त करना है, तो फिर बाबा की श्रीमत अनुसार वो चाहे जैसे भी हैं, वो चाहे जैसा भी कर रहे हैं, हमारी कौन सी भावना होनी चाहिए? सदा शुभ भावना और कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो कभी भी संबंधों में प्रश्नचित नहीं होंगे, अगर भाग्यवान है बाबा हम पर राजी है तो हम ये प्रश्न नहीं करेंगे ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों बोलता है, ये इसको ऐसे होना चाहिए। माना वो जो सूक्ष्म घृणा भाव आ जाता है वो नहीं आएगा। हमेशा हम ये समझेंगे कि ये आत्मा का पार्ट है, ये इसका अपना पार्ट बजा रही है, माया के परवश है, और साक्षी होकर के हमें उसके पार्ट को देखना है, पार करना है। नहीं तो प्रश्नों में चले जाते हैं, और जब प्रश्नों में चले जाते हैं तो फिर बहुत व्यर्थ संकल्प, और व्यर्थ संकल्प की रचना एक बार कर ली, बाबा कहता है फिर अवस्था पर उसका असर आता है और बाबा से हमारा योग टूट जाता है। तो संबंधों में भी हमें जो भी हमारा रहा हुआ हिसाब किताब है उसे भी हमें सहज रूप से बाबा की श्रीमत अनुसार चुकतू करते जाना है। जब सत्यता की शक्ति हमारे अंदर होती है तो बाबा कहता है कि कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने आई, लौकिक जो भी समाज था उसके द्वारा भी, और चाहे ईश्वरीय परिवार के अंदर भी भिन्न भिन्न संस्कारों वाली आत्माएं थी, लेकिन क्योंकि एक बल एक भरोसा था बाबा का, तो बाबा ने सदा उस पर विजय पाई और कभी भी सत्य ज्ञान से बाबा हटे नहीं। सबसे बड़ी जो बाबा में निर्भयता की पावर थी, बहुत लोगों ने कहा कि आप ये दो बातें बोलना छोड़ दो, पवित्र बनो जैसे कहते थे और शुद्ध भोजन सात्विक भोजन लेना, ये दो ही हमारी धारणा ऐसी है जिसमें लोग थोड़ा सा मुश्किल महसूस करते हैं। तो वहां सिंध में बाबा को बोला कि बाबा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आपका सत्संग बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ आप थोड़ा सा ये कह दो कि पवित्र रहो, थोड़ा थोड़ा पवित्र रहो, पवित्र रहना ही है ऐसे मत बोलो। फिर दूसरी बात भी जो भोजन की, तो बाबा ने कभी उससे कॉम्प्रोमाइज किया? बाबा ने कभी भी नहीं। बाबा ने कहा, बाबा ने पहले तो कभी ये स्वीकार ही नहीं किया कि मैं कहता हूँ, शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा की सतयुगी दुनिया की स्थापना करने आए हैं, और बाबा ने जो श्रीमत दी है मैं भी उसी पर चल रहा हूँ, तो सभी को भी जो भी बाबा के पास आएंगे उसे उन्हें उसी श्रीमत पर चलना है। कई बार हम ऐसा करते हैं, जब सबको ज्ञान सुनाते हैं, बाबा कहते हैं सत्य ज्ञान सुनाओ, लेकिन उसमें अथॉरिटी के साथ साथ नम्रता भी हो, स्नेह भी हो, शुभ भावना भी हो। तो जब उसमें स्नेह और नम्रता होगी तो सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि ये कोई अभिमान में अपनी बात कह रहे हैं या बहुत नशे से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उनको लगेगा हमारे कल्याण के लिए ये बात कही गई, ऐसी बात तो हमने कभी सुनी ही नहीं पहले। अब जैसे सर्वव्यापी का ज्ञान है तो इतना स्पष्ट रीति से कभी कोई इस बात को कह ही नहीं सकता जितना बाबा ने हमें समझाया कि शिव बाबा परम धाम निवासी हैं। हाँ, या जो भी और हमारे ज्ञान की सत्य बातें हैं, जैसे 84 लाख जन्म वाली बात है, या गीता का भगवान कौन, वो बात जो हम लोगों को स्पष्ट करते हैं, तो सत्य ज्ञान की बातें हमें स्पष्ट करनी है। कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ धारणा धारणा की बातें सुना देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये बातें ना उनको पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसमें थोड़ा मतभेद तो है ना, शास्त्र जो कहते हैं और जो धर्म कहते हैं वो अलग कहते हैं, और बाबा ने जो बताया वो बिल्कुल उससे भिन्न है। तो फिर हम ऊपर ऊपर की बातें ज्ञान के रूप में सुना देते हैं, सत्य ज्ञान से उनको वंचित रखते हैं, फिर सोचते धीरे धीरे उनको पता चल जाएगा, जब समय आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो सत्य ज्ञान नहीं सुना तो आत्मा में वो पावर नहीं भरती, और इसीलिए वो फिर वो अधिक समय तक ज्ञान में चल भी नहीं पाते हैं। वो फिर उतना ही जो कहेंगे वारिस क्वालिटी के बनना चाहिए, वारिस क्वालिटी की आत्माएं नहीं बन पाती हैं। बाबा के समीप बच्चे बनना, वो जो भाग्य उनको मिलना चाहिए उस भाग्य से वंचित रह जाते हैं। तो हमें वो बातें भी बाबा कहते हैं, सत्य ज्ञान की बातें भी, जिस विधि पूर्वक ब्रह्मा बाबा ने सबको कही, है ना। कभी भी बाबा ने ऐसे नहीं कि मैं छुपा लूं इस बात को, इसको बुरा लग जाएगा, ऐसा नहीं किया। और हमारे जो वचन होने चाहिए, जो सत्य हम बोलते हैं, कई बार लोग जब सच बोलते हैं ना तो थोड़ा जोश में आ जाते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल कहती हूं ना, तो फिर सच कड़वा लगता है। जब हम थोड़ा सा गुस्से में आकर के और जोश में आकर के अपनी बात को, सत्य बात को, भले हम सत्य हैं लेकिन उसको थोड़ा जोश में आकर के सिद्ध करना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर वो सत्य लगता नहीं है। अगर हम इस तरह से माना, उसमें दिव्यता खत्म हो जाती है। और इसीलिए कहा कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय लगने वाला सत्य बोलो। एक संस्कृत में श्लोक कहते हैं, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन मधुर लगे, ऐसा सत्य बोलो। ऐसे बोल हो जिसमें किसी का कल्याण समाया हो, कल्याण हो। जैसे कहा सत्य वचन महाराज, जैसे बाबा कहते हैं अगर सत्य वचन महाराज का यादगार बना है तो आपसे ही बना है। भक्ति में जो भी यादगार बने हैं वो यहाँ के ही बने हुए हैं। तो हमारे वचन सत्य कब होते हैं? सत्य माना वही वचन सत्य सिद्ध हो जाए। हमने किसी के लिए जो बोल बोले वही उसके लिए वरदान बन जाए। जैसे हम बाबा बोलते थे या दादियां बोलती थे, बाबा ने जिनके लिए जो बोला वो उनके लिए वरदान हो गया। आज भी जो भाई बहने बाबा से मिले वो सुनाते हैं ये बात कि बाबा ने ये कहा और सचमुच वैसा ही हमारा जीवन बन गया। तो वो बोल में ताकत कब आएगी? जब वो सत्यता की शक्ति हमारे अंदर होगी। और अगर सत्यता है तो जैसे कहा कि वो दिखाते हैं विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए हैं, तो शेष शैया किसका प्रतीक है? ना, माया के विकराल रूप का प्रतीक है। लेकिन उसको भी क्या बना दिया? उसको भी शैया बना दिया ना, सोने का स्थान बना दिया। या श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि उन्होंने सांप के फन के ऊपर डांस किया, तो उसको भी उन्होंने डांस करने की स्टेज बना दिया। तो ये किसकी पावर है? सत्य ज्ञान की ताकत है कि माया का कोई भी रूप आ जाए, चाहे कितनी भी भयानक परिस्थिति आ जाए, चाहे हमारे संबंध कितने भी परेशान करने वाले हों, माया का कितना भी विकराल रूप हो, वातावरण कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्य ज्ञान की शक्ति हमें सब पर विजयी बनाती है। और इसीलिए कहा सत्यमेव जयते। अगर हम सत्य के मार्ग पर हैं तो विजयी होंगे। या अंतिम विजय सत्य की होती, भले सत्य की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है कभी भी। तो डूबती नहीं है माना सत्य के मार्ग पर चलने में मुश्किलें जरूर आती हैं, सहन करना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि सच के मार्ग पर चलना मुश्किल है। और ये भी देखने में आता है कि जो झूठ के रास्ते पे चल रहे हैं वो तो ज्यादा सफल हो रहे हैं ना, वो तो और आगे बढ़ रहे हैं, उनका तो बहुत नाम हो रहा है। तो फिर सोचते हैं चलो हम भी ऐसा ही करते हैं तो हमें भी वो प्राप्तियां होने लग जाएंगी। तो बाबा कहते हैं जरूर हो सकती हैं, अल्पकाल की प्राप्तियां होंगी, लेकिन अगर हम सत्य के मार्ग पर हैं, हमने सहन किया है ना, अगर हमने मुश्किलों का सामना किया तब हमने भगवान के दिल को जीता। और भगवान के दिल में हम आगे हैं, हमें आत्माओं से नहीं, किससे काम है? बाबा से काम है ना। तो अविनाशी प्राप्ति कराने वाला कौन है? सदाकाल की प्राप्ति कराने वाला कौन है? वो तो बाबा है ना। तो अभी हमने वो विजय पाई तो पूरे कल्प के लिए हम विजयी हो जाते हैं। और उनकी विजय वो सिर्फ अल्पकाल की विजय, थोड़े समय का वो मौज करते हैं और बाद में जब सच सामने आता है तो क्या गति होती है। दुनिया में भी ऐसा ही होता है ना, जब सच सामने आता है, मानो किसी का घोटाला पकड़ा जाता है, तो घोटाला जब तक नहीं पकड़ा गया तब तक तो मौज करते हैं वो, क्योंकि कमाया है बहुत उससे मौज करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो फिर बदनामी होती है, वो तो है ही है, उसके साथ साथ जेल और जो भी सजा मिलती है वो सब सजा भोगनी पड़ती है। तो इसलिए सच सामने आता ही है, देर है अंधेर नहीं, जैसे कहते हैं ना भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो जब वो सच सामने आएगा तो वो अल्पकाल की प्राप्ति खत्म, वो वहीं समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने जीवन में सत्यता की शक्ति के आधार पर ही कर्म करने हैं, व्यवहार करना है और सच्चे बाबा के साथ सदा ही सच्चे बनकर चलना है। तो उसके दल तप्त नशीन हम अनुभव करेंगे और हमेशा महसूस करेंगे कि बाबा के वरदानों से ही पल रहे हैं, चल रहे हैं और उड़ रहे हैं। ओम शांति।
बाबा जिगर में तेरा प्यार, दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
का आधार तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जी।